हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है अमूर्त कला और इसके दो चित्रकार। यह आपका लास्ट चैप्टर है, आज आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और इसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उससे फ़ोन करके पूछ सकते हो और फिर आपके क्लास टेस्ट शुरू करेंगे। तो हम बात करते हैं अमूर्त कला, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या वस्तु निरपेक्ष कला। यूरोप में जब द्वितीय विश्व युद्ध का तांडव शुरू हुआ, पेरिस के अनेक कलाकार कला साधना के उद्देश्य से न्यूयॉर्क अमेरिका में जा बसे और स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर कला रचना करने लगे। इस प्रकार कला के दो प्रमुख गढ़ बन गए, एक तो पेरिस व दूसरा अमेरिका। दोनों ही गढ़ों में समकालीन चित्रकारों द्वारा अमूर्त अभिव्यंजनावादी अभियान आरंभ हुआ। इस अभियान का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, केवल एक गाइडिंग प्रिंसिपल था। उन्होंने कार्य की सृजनशीलता और पहले से सुनियोजित चित्रण से इनकार कर दिया। उनका बिना सोचे समझे चित्रण पर जोर था। उनका बस एक नारा था कि चित्रकार को बिना किसी पूर्व विचार के चित्रण में जुट जाना चाहिए। यद्यपि वस्तु निरपेक्ष कला 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन मानी गई है, लेकिन इसकी कल्पना नई नहीं थी, बल्कि प्राचीन कलाकारों ने भी इसके महत्व पर विचार किया था। उन्होंने माना था कि वस्तु निरपेक्ष गुणों से चित्र को सौंदर्य और सामर्थ्य प्राप्त होता है। सर्वप्रथम प्लेटो ने इस कला पर अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि वृत्त या आयत ऐसे आकार हैं जो कि बाह्यकरण के कारण सुंदर नहीं लगते, वरन सौंदर्य उनकी प्रकृति है। इस प्रकार प्राचीन काल से ही अमूर्त कला के प्रभाव को पहचान लिया गया था। इसका अवतरण अचानक नहीं हुआ। बहुत समय पहले मोरोडेनिस ने भी एक चित्र बनाया जिसमें केवल रंगों के द्वारा उसको परिपूर्ण किया, जिसमें आकार का कोई स्थान नहीं था, केवल रंगों का एक संसार था। उसमें यह कलाकार यह नहीं जानता था कि यह अमूर्त कला का शुभारंभ है। इस प्रकार ही अनजाने में ही प्रभाववाद, फाववाद, अभिव्यंजनावाद में इस शैली का निरंतर प्रयोग होता रहा। घनवादी भी इस शैली के बहुत निकट पहुंचे और दादावादियों के पहले कलाकार पिकाबिया ने इसी शैली में कार्य किया, लेकिन कंडेंस्की और मोंड्रेन, पॉलक आदि कलाकारों ने इस कला को नए आयाम दिए हैं। तो ये तो थी अमूर्त कला की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जिसमें हम कलर और लाइंस के थ्रू हम इसे पूरा करते हैं, कोई आकार नहीं होता इसमें। अब इसके एक इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं कैंडिन्स्की। इनका जन्म 1866 में हुआ था और मृत्यु 1944 में। कैंडिन्स्की वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेताओं में से एक थे। आरंभ में वह एक लैंडस्केप पेंटर थे। उनके लैंडस्केप बहुत फेमस थे। फोस्टर सीरीज ने कई बुक्स पब्लिश की उनकी लैंडस्केप पेंटिंग्स पर, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रयासों से वह वस्तु निरपेक्ष कला के शिखर तक जा पहुंचे। उन्होंने आरंभिक चित्रण फाव शैली से मिलते जुलते किए। धीरे धीरे विविध शैलियों में चित्र बनाते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि चित्र में सौंदर्यात्मक मूल्यों के लिए किसी वस्तु विशेष के दर्शन आवश्यक नहीं है। वृत्त, वर्ग, आयत आदि आकार जो नीरस समझे जाते हैं, वो मानव मन पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। फलस्वरूप वह वस्तु निरपेक्ष कला का सृजन करने लगे और उन्होंने वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि ज्यामितीय आकारों से जो चित्र बनाए, वो वस्तु निरपेक्ष कला के और अभिव्यंजनावाद के अद्वितीय उदाहरण हैं। केंडेंस्की की संगीत में रुचि थी, अतः वह कला की तुलना संगीत से किया करते थे। वह मानते थे कि जिस प्रकार संगीत में मधुरता, लय व कर्ण प्रियता होती है, उसी प्रकार चित्र की रंग रूप रेखाएं भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम होती हैं। अतः उन्होंने इसी आधार पर अपने चित्रों में सशक्त भाव अभिव्यक्ति के लिए संगीत में शीर्षक देने का प्रयास किया और ये समझने का प्रयास किया कि रंग रेखा व ज्यामितीय आकारों के द्वारा चित्र को एक भाषा दी जा सकती है। अब हमारे अगले चित्रकार हैं मोंड्रेन। इनका जन्म 1872 में हुआ और इनकी मृत्यु 44 में हुई। आधुनिक कला की गतिविधि प्रभाववाद से आरंभ होकर घनवाद तक अपनी चरम सीमा को प्राप्त हुई, लेकिन इस समय तक कलाकार आकारों के द्वारा या उनके डिस्टॉर्शन के द्वारा, डिस्टॉर्शन मतलब उनको तोड़ मरोड़ कर बनाते थे, उसको डिस्टॉर्शन कहते थे, तो डिस्टॉर्शन के द्वारा चित्र को नवीन स्वरूप प्रदान कर रहे थे। सभी कलाकारों ने भाव अभिव्यक्ति को चित्र के समक्ष साधन माना, लेकिन अमूर्त कला के प्रवर्तक केंडेंस्की भी भाव अभिव्यक्ति में विश्वास रखते थे, लेकिन मॉन्ड्रीन ने कला को दूसरी ओर मोड़ दिया। उन्होंने ऐसी कला विकसित की जिसमें मानवीय आकारों का कोई स्थान न था और अपने प्रयासों से ऐसी शैली बनाई जो 20वीं शताब्दी की मूर्तिकला, स्थापत्य कला, विज्ञापन कला और दैनिक जीवन में भी प्रवेश कर गई। 1908 में उन्होंने ट्रीज पर एक सीरीज बनाई, जैसे रेड ट्री, ग्रे ट्री, ब्लूमिंग एप्पल ट्री आदि। 1912 में पिकासो व ब्रॉक से प्रभावित होकर उन्होंने अनेक चित्र बनाए, लेकिन रुचि तो अमूर्त कला में थी। इसी कारण उन्होंने कला पर ही कार्य किया और बाद में चित्रों में उनके आकार लुप्त हो गए। रंगों रेखाओं के साधारणीकरण के द्वारा इस प्रकार सुनियोजित किया कि कैनवस पर काली चौड़ी रेखाएं व प्राइमरी कलर का अवतरण हुआ। इस प्रकार उनके द्वारा आधुनिक कला में यथार्थ आकारों की समाप्ति हो गई। रेखा व रंगों के तालमेल से नई अमूर्त कला आरंभ हुई। तो आपका आज का लेक्चर अब बस यही खत्म होता है बच्चों, और आपको जो प्रॉब्लम हो आप मुझे फोन कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।